This is an ABP Life podcast.
हाल ही में भारत में हमें कई लोगों के हार्ट अटैक से मरने की खबरें सामने आई, और कई लोगों का मतलब वो लोग जो जवान हैं, 20 से 40 साल की उम्र के बीच के लोगों की मैं बात कर रही हूँ दोस्तों, जिन्हें हार्ट अटैक आया है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है, और इसलिए इस पर चर्चा होनी शुरू हुई है। साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स ने मिल करके इस पर रिसर्च करना शुरू किया है, और जो नतीजे आए हैं वो हैरान करने वाले हैं, और कोविड-19 से सीधे सीधे तरीके से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ साहिबा खान और आप सुन रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट की पेशकश FYI यानी कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आज की इन्फॉर्मेशन है बहुत ज्यादा जरूरी। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला और प्रोटेस्ट रैप के उभरते सितारे MC तोड़फोड़ उन कई नामों में से हैं जिनकी मौत हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से हुई। अखबारों में जब दोनों की उम्र जानी तो लोगों के होश उड़ गए। 40 वर्षीय सिद्धार्थ शुक्ला और 24 वर्षीय MC तोड़फोड़ उर्फ धर्मेश परमार की इस उम्र में दिल के दौरे से मौत पर लोगों ने बहुत हाई फजीदा किया। इसलिए हमने बात की FMRI में डायरेक्टर एंड हेड क्लिनिकल कार्डियोलॉजी एंड कार्डिक इमेजरी विनायक अग्रवाल से। विनायक जी ने भली भांति इस रिसर्च पर प्रकाश डालते हुए हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपके लिए भी उतना ही फायदेमंद होगा जितना मुझे लगा। हेलो डॉक्टर विनायक, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट FYI।
थैंक यू साहिबा, थैंक यू वेरी मच।
जी,
मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात कर रहा हूँ।
जी विनायक जी, इम्पोर्टेंट दरअसल इसलिए भी है क्योंकि हम इतना देख रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई जवान इंसान उनकी मौत हो रही है कार्डियक अरेस्ट के द्वारा, या फिर कोई हार्ट अटैक हो रहा है, दिल का दौरा आ रहा है। 40 साल की उम्र के सिद्धांत शुक्ला को आया, अभी हाल ही में 24 साल की उम्र के हमारे धर्मेश परमार जी जो हैं, जो एक MC तोड़फोड़ नाम से थे, रैपर थे, उनको आया, ही जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड। तो एक जनता में ना एक अफरा तफरी सी मच रही है कि भाई आखिर ऐसा हो क्या रहा है जो इतने ज़्यादा केसेस हमें दिखाई दे रहे हैं हार्ट अटैक्स के। तो अभी रिसर्च, जैसे मैंने आपको बताया था, रिसर्च आई है कि भाई हो सकता है कि कोविड-19 से रिलेटेड। तो सर आप बताइए, आप अपनी एक्सपर्टीज से हमें बताइए कि क्या कोविड-19 और हार्ट अटैक जो आजकल लोगों में हो रहे हैं उनका कोई लेना देना है?
एक बहुत जो है आपने जरूरी मुद्दा उठाया, और ये प्रश्न भी बहुत जरूरी है क्योंकि जो हार्ट अटैक है उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां एक आज की डेट में हैं, और उसको हमें अगर हमें सही ढंग से समझना है तो उसके लिए हमें एक बेसिक हार्ट अटैक क्यों पड़ता है इसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूं हमेशा कि गांव में सपोज एक मेरा किसान ताऊ है जो 70 साल का है और जो बीड़ी हुक्का भी पीता है खूब, उसने जिंदगी भर घी तेल सब खाया है, तो और मान लीजिए उसकी 3 धमनियों में से 1 धमनी 90% बंद है। जब वो चलता है तो छाती में भारीपन होता है, सांस फूलती है, जो कि सारे हृदय की धमनियों के बंद होने के लक्षण है जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज बोलते हैं। और एक दूसरी तरफ हमारा एक 40 साल का एक नौजवान है जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, देर रात तक उसकी मीटिंग्स चलती हैं, वो जंक फूड भी खा रहा है, बीड़ी सिगरेट भी पी लेता है कभी कभी, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह ज्यादा चलता फिरता नहीं है, और डेस्क जॉब करता है, उसकी 1 धमनी 50% बंद है। और जो हमारा जो ताऊ जो किसान भाई किसान है 70 साल के, उनकी धमनी 90% बंद है। तो किसको हार्ट अटैक पहले पड़ेगा? तो आम इंसान ये सोचेगा कि 90% जिसकी धमनी बंद है उसी को पहले हार्ट अटैक पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो 50-40 वर्ष की आयु के नौजवान हैं उनकी जो प्लाक जमा है, 50% जो प्लाक जमा है उनकी धमनी में, वो सॉफ्ट प्लाक है, उसकी जो ऊपरी सतह है वो पतली है और वो बड़े आसानी से फट जाता है। जैसे ही वो फटता है प्लाक, तो सारी जो अंदर का कूड़ा जो चर्बी है वो बाहर आ जाती है, धमनी को अचानक बंद कर देती है और हार्ट अटैक पड़ जाता है। ये जो मैकेनिज्म है हार्ट अटैक पड़ने का उसको हम बोलते हैं वल्नरेबल प्लाक, कि जो ऊपरी सतह है वो फट जाती है और जो अचानक से धमनी उसमें क्लॉट जम जाता है और वो बंद हो जाती है बिना किसी वार्निंग के। दूसरी तरफ ये जो मेरे ताऊ हैं जो गाँव के किसान हैं, उनको सिम्टम्स रहते हैं, चलने पे सांस फूलती है, छाती में भारीपन आता है, लेकिन ऊपरी सतह 40-50 सालों में जाके धीरे धीरे लेयर बाय लेयर परत वो बनी है, तो जो प्लाक है उसमें लेयर कोर छोटा होता है और परत मोटी होती है, तो वो फटती नहीं है। सिम्टम तो देगी लेकिन उनको हार्ट अटैक नहीं पड़ता काफी लंबे समय तक। तो अगर 10 ऐसे मरीज लें जिनको हार्ट अटैक पड़ता है, मेरी इमरजेंसी में आते हैं, 70% हार्ट अटैक 50-70% बंद आर्टरियों में पड़ते हैं, जबकि 30% हार्ट अटैक 70-90% आर्टरियों में पड़ते हैं। तो उल्टा है ये, मतलब काउंटर इंट्यूटिव है कि हार्ट अटैक उन धमनियों में ज्यादा पड़ रहा है जो कि कम बंद हैं। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है जानना कि जब हम अपने इलाज कराने जाते हैं, और तो ट्रेडमिल या भाई हम स्ट्रेस इको या कई लोग सीटी एंजियो भी करा लेते हैं और उनमें 40% ब्लॉक मिलता है, तो हम उनको ये कहते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल सुधारिए, वॉक कीजिए, डाइट अच्छा रखिए, लेकिन इनमें हार्ट अटैक पड़ने की संभावना ज्यादा रहती है। तो जितने भी ये यंग लोग हम देख रहे हैं, इनमें हमें ये जांच करनी चाहिए कि क्या इन लोगों का रहन सहन कैसा है, इनका डाइट पैटर्न कैसा है, क्या इनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है, स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते हैं, इनकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है।
सर, लेकिन ये जो अभी रिसर्च आई है इसमें ये उन्होंने बोला है कि ज़्यादातर फ्लू जब होते हैं, जैसे स्पेनिश फ्लू फॉर एग्जांपल जब हुआ था, उसके बाद कई लोगों में हार्ट डिजीज़ देखने को मिले हैं, और ज़्यादातर ये देखा गया है कि फ्लू के बाद इंसानों में ऑर्गन फेलियर और अलग अलग तरीके की बीमारियां तो होती हैं जिसमें हार्ट डिजीज़ भी इंक्लूडेड होती है। तो क्या आप कहेंगे कि जो आपने जैसे हमें 10 इंडिकेटर्स बताए हैं वो तो है ही हैं, लेकिन इस समय अगर हम बात करें तो क्या COVID-19 बाय एनी चांस डायरेक्टली इसमें रिलेटेड है?
तो मैं अब ये कोविड वाला मैं इशू आपके सामने इसी बैकग्राउंड में प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, ऐसा है कि हमें करीब करीब 100 सालों से पता है कि जब जब फ्लू सीजन आता है, जैसे अगर हम US में देखें, यूरोप में देखें या अपने कंट्री में भी देखें, जब भी इन्फ्लुएंजा या फ्लू सीजन आता है तो हार्ट अटैक या स्ट्रोक का रिस्क, पैरालिसिस का रिस्क बढ़ जाता है, और ये साइंटिफिक फैक्ट है। इसका कारण ये है, फ्लू या कोई भी बीमारी जो हमारी बॉडी में, पूरे बॉडी में इन्फ्लेमेशन करती है, सूजन करती है, वो इसी प्लाक को, जो प्लाक जमा है उसके अंदर भी सूजन पैदा करती है, जिसको हम कहते हैं एंडोथेलियल डिसफंक्शन या इन्फ्लेमेशन। ये प्लाक के अंदर भी सूजन करती है और ये उनके प्लाक के फटने के चांसेस बढ़ा देती है। तो कोविड में ये सही बात है कि कोविड भी एक वायरल फीवर है, वो भी एक इन्फ्लुएंजा जैसा ही फ्लू है, और इसलिए उसमें भी ज़्यादा हमने हार्ट अटैक की संभावना देखी है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोविड के ज़माने में हार्ट अटैक ज़्यादा देखे, लेकिन एक बात मैं यहाँ दोबारा बताना चाहूँगा कि अगर हम आंकड़े देखें तो ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन जो हार्ट अटैक के नंबर हमने अपने हॉस्पिटल्स में देखे वो बहुत कम थे, हार्ट अटैक या स्ट्रोक के। तो एक तरफ ये भी देखा गया है कि अगर हम अपना रहन सहन ठीक कर लें, हमारा स्ट्रेस कम हो जाए, तो हो सकता है कि हमारे हार्ट अटैक के जो नंबर हैं वो कम हो जाए। दूसरा एक कारण ये भी हो सकता था कि कई लोग हार्ट अटैक की बीमारी होने के बावजूद या कम हार्ट अटैक के, साइलेंट हार्ट अटैक माइनर सिम्टम्स हुए, मारे गया ही नहीं, तो हो सकता है इस कारणवश भी हार्ट अटैक या स्ट्रोक की हमने जो लक्षण या जो मात्रा नंबर देखे हैं हॉस्पिटल्स में वो वर्ल्ड ओवर कम देखे गए। लेकिन अगर हम कोविड के मरीजों को लें जिनको कोविड हो गया, उन लोगों की मात्रा लें और उनको देखें, तो उनमें हार्ट अटैक या हार्ट संबंधित मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस या कार्डियोमायोपैथी, जिसमें हार्ट वीक हो जाता है, इस तरह के लक्षण ज्यादा देखे गए, इस तरह की बीमारियां ज्यादा देखी गई हैं।
जी, तो मतलब ये हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि COVID-19 भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है आजकल जो नौजवान हैं उनमें हार्ट अटैक्स ज्यादा आने के।
बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है।
जी सर, ये बात बताइए कि एक इंसान को कैसे कुछ आइडिया हो सकता है, क्या उन्हें मालूम पड़ सकता है कि वो उन्हें COVID-19 के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उसमें शायद उन्हें आगे चल के हार्ट अटैक आ सकता है? क्या ऐसा कुछ प्रोसेस है जिससे कि हमें पता चल सकता है?
ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिसको मैं कोशिश करूंगा कि मैं समझा सकूं पब्लिक को। देखिए, ऐसा है कि जब कोविड होता है, कोविड के दो फेजेस होते हैं, पहला हफ्ता जो कि एक नॉर्मल वायरल फीवर के जैसा होता है, और दूसरा हफ्ता जिसमें एक्चुअली इम्यून रिस्पॉन्स आता है। जिन लोगों का कोविड बिगड़ जाता है, उन लोगों का कोविड नॉर्मली सेकेंड वीक में बिगड़ता है, जब वो 7-15 दिन के बीच में, ये वो फेज होता है जहां वायरस तो मर गया है या मरने वाला है, काफी कम हो गई है, लेकिन उसने हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, जो हमारा शरीर को मारने के लिए पैदा करता है एंटीबॉडीज, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और रक्षा की भक्षक बन जाता है। तो ये एंटीबॉडीज जो हैं जब अत्यधिक मात्रा में प्रोड्यूस होने लगती हैं, तो वो हमारा जो कॉम्प्लिकेटेड कोविड है, जिसमें कि निमोनिया होना, हार्ट अटैक होना, हार्ट के ऊपर अफेक्ट होना, कार्डियोमायोपैथी होना, क्लॉट बनना, स्ट्रोक होना, ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये सेकेंड वीक में और उसके बाद ही आती हैं। तो एक तो हमें ये पता लगना चाहिए कि हमारा कोविड किस तरह का रहा। नॉर्मली कोविड अगर कॉम्प्लिकेटेड रहा तो उनमें हम यूजली ब्लड थिनर्स देते हैं, या हम उनमें कि हम उनमें कोशिश करते हैं कि कोविड के ये जो मरीज जो कॉम्प्लिकेटेड फेज से गुजरे हैं, उनको हम काफ़ी क्लोज वॉच रखते हैं उनके ऊपर, उनको हम हर हफ्ते बुलाते हैं, उनके एको भी करते हैं, ईसीजी भी करते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं कि जब आप चलते तो सांस तो नहीं फूल रही, कोई छाती में भारीपन तो नहीं आ रहा, उनको कमजोरी या एक लो ग्रेड फीवर तो नहीं आ रहा। जैसे एक और एंटिटी सामने आ रही है अब धीरे धीरे, जिसको बोलते हैं लॉन्ग कोविड सिंड्रोम। लॉन्ग कोविड सिंड्रोम में एक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन या फीवर चलता रहता है, या उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस, बहुत ज़्यादा एक जैसे अंदर से एक अच्छा अलग फीलिंग आती रहती है, और ये कई हफ्तों तक रह सकता है, कई बार 6-6 महीने भी ये हमने सिम्टम्स देखे हैं। तो ऐसे लोगों में हम ये देखते हैं कि अगर हम इन लोगों को क्लोजली फॉलो करें तो हो सकता है कि हम इनको पहले पकड़ पाएं हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम होने से कैसे पहले। नंबर टू, एक जो चीज़ हमने देखी है कि कई लोग कोविड से निकलने के बाद बहुत जल्दी एक्सरसाइज या जिम जाना शुरू कर देते हैं, ये दिखाने के लिए कि भाई हम अब ठीक हो गए और अब हम इम्यून हैं, अब हमें कोई अब दोबारा हमें कोविड नहीं हो सकता। तो दे स्टार्ट रनिंग मैराथन, दे स्टार्ट रनिंग लॉन्ग डिस्टेंस, 10-10, 15-15 किलोमीटर भागना, 50-50 किलोमीटर साइकिलिंग करना, क्योंकि हम तो पहले भी करते थे और अब तो हम बिल्कुल ठीक हो गए, मुझे माइल्ड डिसीज हुई। तो वो सब में भी आपको ये समझना पड़ेगा कि कोविड एक आम वायरस नहीं है, कोविड एक मल्टी सिस्टम अफेक्शन करता है, और समय समय पे आपको उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए इस वायरस को। अगर आपको कोविड हुआ है तो आप धीरे चलें, आप 10-15 दिन आपको लगेंगे ठीक होने में सिम्टम्स को, उसके बाद भी अगले 15-20 दिन महीना आप थोड़ा धीरे रहें, अपना ग्रेजुअली अपनी एक्सरसाइज या वो जो पैटर्न है उस पर वापस आए। जहां आपको लगे कि मेरे सिम्टम्स पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, मुझे कमजोरी ज्यादा लग रही है, सांस फूल रही है, या चलने में छाती में भारीपन आ रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें, और अगर वो आपको ECG, ECO या PMT टाइप कोई टेस्ट करने के लिए बोलते हैं तो वो करा लें, जैसा भी वो अप्रोप्रिएट समझेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हो सकता है कि जो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कितना भी गलत होगा कि हम बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक या बहुत ज़्यादा इस तरह की कॉम्प्लिकेशन देख रहे हैं, क्योंकि कोविड करीब करीब करोड़ों लोगों को अफेक्ट कर रहा है, और उनमें से क्योंकि ये कोविड है और कोविड का समाना है, तो बहुत सारी चीज़ें उजागर हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें हमें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें अब आपको पता लगती हैं जो शायद पहले पता नहीं लगती। पहले भी यंग एज में हार्ट अटैक्स पड़ते थे, अगर हम भारत का ही आंकड़ा लें तो 50 वर्ष से कम की आयु में, और ये कोविड का आंकड़ा नहीं है, ये मैं आपको नॉर्मल आंकड़ा बता रहा हूँ कि 50 साल से कम की आयु में भारतवर्ष में 10 में से 1 इंसान जिसको हार्ट अटैक पड़ रहा है वो 50 साल से कम की आयु का है, बल्कि 40 से कम की आयु का है, और 50 से कम की आयु में 1 in 4 हार्ट अटैक्स आर अकरिंग इन लेस देन 50 इयर्स ऑफ एज। तो आप समझ सकते हैं कि भारतवर्ष में वेस्ट के हिसाब के अगर हम अमेरिका या यूरोप को देखें तो हमें 10 से 15 साल पहले हार्ट अटैक और स्ट्रोक पड़ना शुरू हो गया है, और इसका कारण है हमारा रहन सहन, खान पान, हमारा रिस्क जो एज ए जेनेटिक पूल, हमारा जो रिस्क फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग है, साइकोसोशल स्ट्रेस है, एयर पोल्यूशन भी अब सामने आ रहा है धीरे धीरे एक रिस्क फैक्टर बन के कि ये भी हो सकता है कि कारण हो हमारे हार्ट अटैक्स वगैरह के लिए।
जी, आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि हम स्पेशलिस्ट के पास या डॉक्टर के पास कब जाएं, क्या सिम्टम्स हैं कि हमें लगना चाहिए कि अब शायद हमारी तबीयत सही नहीं है कोविड 19 के बाद?
तो एक तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जो कोविड है सबसे ज्यादा खतरनाक उन लोगों में है जिनमें कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे कि कोमॉर्बिडिटीज का मतलब है ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकर्स, COPD, कैंसर के मरीज, ओल्ड लोग जो 65 से ऊपर हैं, जिनको पहले हार्ट अटैक, बाईपास या स्ट्रोक हो चुका है, ऐसे मरीज जो हैं इनको, जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, उनमें कोविड ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और उनमें रिस्क फैक्टर हार्ट डिसीज या हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने के ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपको ये सब नहीं भी हैं और आप कोविड होने के बाद या वायरल फीवर होने के बाद आपको बहुत ज्यादा थकान रहने लगी है 15-20 दिन के बाद भी, आपको भूख कम लग रही है, आप चलते हैं तो बहुत ज्यादा सांस फूल रही है, या हल्की सी हरारत सी आपके अंदर बनी हुई है, अगर आप ऐसे में अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो यूजली आपका CRP, ESR, D-dimer, एक HRCT चेस्ट कराते हैं, और अगर ये बढ़े हुए आते हैं इसका मतलब है कि शायद आपका लॉन्ग कोविड सिंड्रोम चल रहा है। कुछ हफ्तों के बाद भी आपको, आपके अंदर CRP जो है वो इन्फ्लेमेशन का सूचक है कि आपके अंदर कोई ना कोई हल्की फुल्की एक लो ग्रेड सूजन या वायरल फीवर के बाद की एक्टिविटी चल रही है, दैट मीन्स कि एक ऑनगोइंग लो ग्रेड स्मोल्डरिंग इन्फ्लेमेशन चल रही है आपकी बॉडी में जो कि आगे चलकर खतरनाक हो सकती है। ऐसे में यही इन्फ्लेमेशन या सूजन हार्ट अटैक, स्ट्रोक या कार्डियोमायोपैथी या हार्ट वीक कर सकती है या निमोनिया कर सकती है। तो ये लक्षण है जिनके पास होते, अगर आपको होते हैं तो आपके अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। अगर आपके लक्षण इससे भी ज्यादा है, जैसे कुछ लोगों को हमने देखा है कि 2 हफ्ते के आसपास उनका जो है ऑल्टर्ड सेंसोरियम हो जाता है, वो बहकी बहकी सी बातें करने लगते हैं या शरीर में कटिंग के साइन आने लग जाते हैं कि जैसे स्ट्रोक हो गया या कोई किसी अंग में बहुत दर्द हो गया या सूजन आ गई किसी पैर में जिसको हम DVT बोलते हैं, अगर इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो भी आपको अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए।
जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर विनायक।
थैंक यू वेरी मच साहब। थैंक यू।
तो ये थे मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विनायक, आपने इन्हें सुन ही लिया होगा। तो भैया स्मोकिंग से बचें क्योंकि एयर पोल्यूशन तो वैसे ही सिगरेट का काम कर रही है, और अगर कोई भी ऐसे सिम्टम्स हैं आपके जो डॉक्टर साहब ने अभी बताए हैं तो प्लीज अपने डॉक्टर के पास जरूर जाएं। आप सुन रहे थे मुझे यानी कि साहिबा खान को ABP लाइव पॉडकास्ट के शो FYI पर। नमस्कार।
हर पल बदलती दुनिया में कोई अपडेट मत करो मिस, डाउनलोड करो ABP लाइव ऐप और जानते रहो।
This is an ABP Life podcast.